हरि शरणम 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 राम
नारायण 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 नारायण। अब बोलो, जो मन में कोई खटकती हो ना, साधन के विषय में कोई अटकाव होता हो, कोई बात खटकती हो, वो पूछो।
जागृति और स्वप्न अवस्था में जो मय भू का भाव रहता है, वो सुषुप्ति अवस्था में रहने के लिए क्या
सकते? क्या
जागृत और स्वप्न दो में मैं का भान रहता है?
हाँ।
तो सुषुप्त अवस्था में
मैं नहीं भाव नहीं था, तो मैं का भान नहीं रहता सुषुप्त अवस्था,
उसमें भी बना रहे उसके लिए क्या उपाय करें?
तो मैं इसको तो मिटाना है, निर्मोह अहंकार बना क्यों रहे, इसको तो मिटाना ही है, इसको बनाया नहीं रखना। जैसे सुषुप्त में याद नहीं रहता, ऐसे जागृत में ही रहना चाहिए। आप कहते हो जागृत में रहे जैसा सुषुप्ति में रहना चाहिए, मेरा कहना है कि जैसे सुषुप्ति में रहे ऐसे जागृत में रहना चाहिए, उसमें अपने का अभाव। इस वास्ते मैं अपने की जरूरत नहीं है। निर्ममो निरहंकार शांति मर गति, निर्ममो निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो निरहंकार होना चाहिए, कैसे सुषुप्ति की तरह। अब सुषुप्ति जागृत सुषुप्ति, जागृत जागृत होती है, जागृत स्वप्न होता है, जागृत सुषुप्ति होती है, ये ध्यान दो। एक जागृत जागृत होती है, एक जागृत स्वप्न होता है, एक जागृत सुषुप्ति होती है। तो जागृत जागृत वो है जो संसार का व्यवहार हो रहा है, लेन देन आदि खाना पीना, ये जागृत में जागृत है। उस जागृत अवस्था में जैसे कोई संबंध नहीं, ऐसी जब बात है उसमें मन लग जाता है, वो जागृत का स्वप्न है, जिसका कोई प्रसंग नहीं, कुछ काम करना नहीं, ऐसी बातें याद याद उसे भूल जाता, मन वो चलता है, वो जागृत का है स्वप्न। और जागृत में सुषुप्ति वो है कि वो शांत रहे, कोई फुरना नहीं है, परंतु सुषुप्ति में जैसे अहम भाव नहीं रहे, ऐसे अहम भाव नहीं रहे, वो है जागृत की सुषुप्ति। तो जागृत की सुषुप्ति है वो हाथ आ जाना चाहिए, फिर से ही हो गया। जागृत 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 स्वप्न तो आता है अनुभव में, पर जागृत सुषुप्ति अनुभव में नहीं आती है जल्दी। वो आ जाए जागृत अवस्था में भी अहम भाव का अभाव हो जाए, सम शांत आनंद घने स्वतः सिद्ध तत्व है। तो उस जागृत में सुषुप्ति होती है तब उसमें जागृति रहती है, सुषुप्ति में सुषुप्ति होती है उसमें जागृति नहीं रहती, उसमें भूल जाता है सब कुछ। और जागृत की सुषुप्ति में संसार को भूल जाता है, इंद्रियों को भूल जाता है, मैं मेरे को भूल जाता है, परंतु एक तत्व परिपूर्ण सच्चिदानंद गण ये जागृत रहता है, वो है जागृत की सुषुप्ति। और वो भूल जाते हैं तो सुषुप्ति होगी, फिर सुषुप्ति होगी, ऐसे तत्व की जागृति रहे तो जागृति में सुषुप्ति हो जाए, बोध हो जाएगा, फिर पूर्णता हो जाएगी। ये बात है। तो आवश्यकता सुषुप्ति में अहंता की नहीं है, आवश्यकता जागृत अवस्था में अहंता के अभाव की है। जैसे काम करते हो, काम में तल्लीन हो जाते हो, उस समय में ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या नाम है, याद नहीं रहता है, ऐसा होता है कि नहीं? आप हिसाब बैठे जोड़ करने लगे और लंबी जोड़ है, उसमें जोड़ते जोड़ होने के बाद होश आएगा, पहले पता नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ, क्या जाति है, क्या नाम है, किस दिन, वो याद आता है क्या? ठीक तल्लीन मन हो जाए तो याद नहीं आता। तो वो मन है वो जोर में लगा रहता है, वो जोर तो हो नहीं, वो काम तो हो नहीं, और मन वैसा ही हो जाए, वो होती है जागृति सुसुप्ति। ख्याल में आएगी नहीं, बात के द्वारा ख्याल तो आरंभ से आइए, समझ तो ले रहे जय अवस्था ना हो, परंतु ये पता तो लग जाए भी ऐसा होता है। जैसे तुम्हारा ब्याह हुआ कि ब्याह तो नहीं गया, बारात में गए हैं, तो मेरी बातों समझे तो बारात हो गई, बारात में चले गए, और वो बात ठीक आज अनुभव ब्याह हो गया, ये तो पुरुष हो गई। तो ये बात आपके ख्याल में आएगी नहीं, मन जागृत अवस्था है परंतु तो कोई फुरना नहीं है, मैं हूं ये भी फुरना नहीं है, परंतु तो जागृति है साफ, एक सच्चिदानंद घर परिवर्तन बहिरंतस भूता नाम असरम सर्वे उच, प्राणियों के बाहर भी भीतर भी ऊपर भी नीचे भी पूर्व भी पश्चिम भी उत्तर भी दक्षिण भी बहिरंतस्थ भूता नाम अचरम चरम और चर असर भी, इनके बाहर भीतर ऊपर नीचे भी और चर असर भी, ऐसे देखो सूक्ष्म तद अभिजय, ऐसा रहने पर वो जो तत्व है वो अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय संसार है, प्रकृति के कार्य है, ये ज्ञान का विषय है, तो सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से ज्ञेय नहीं है, ये ज्ञेय का रूप बताया भगवान ने, ज्ञेय में तत्प्रवक्षा में, तो वहां पर सूक्ष्म अविज्ञेयम, वो अविज्ञेय है, अविज्ञेयम ज्ञेयम इति क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समर्थत, ये ज्ञेयम ये तत्प्रवक्षा में इसका उपसंहार कहा गया, क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समर्थत मत भक्त एतद विज्ञा है, उस ज्ञेय को जान लिया ठीक तरह से मत भाई उपदेश भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जागृत में सुषुप्ति होनी चाहिए, अहंता का भान ही ना हो जागृत अवस्था, जैसे सुषुप्ति में अहंता का भान नहीं होता, इसमें क्या है प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे चर असर प्राणी सब एक सच्चिदानंद घर ही है, वासुदेव सर्वम, ऐसे स्थिर हो जाता है, वो है जागृत की सुषुप्ति। अब इसमें वो शंका तो बोलो, मानो बात के द्वारा तो ये समझ में बात आ गई ना, नहीं आई तो वो शंका करो पूछो आप। जागृत सुषुप्ति हो जाए कि चुप हो जाए, चुप होने का अर्थ कि मन में कोई फुरना नहीं हो, कहीं से बात ही फुरना चुप, अचानक चुप हो जाओ, जैसे आप अभी अभी आप देखते हो तो अभी अभी इसी क्षण ही, कोई देरी का काम नहीं है, फिर हो जाएगा ऐसा नहीं, अभी ऐसे फुंकार से श्वास को बाहर निकाल दो, नाक द्वारा मुख द्वारा नहीं, ऐसे श्वास को बाहर फेंक करके और चुप हो जाओ, अभी उसे अक्षर होंगे, अभी अभी अनुभव हो जाए, करो क्या कह रही, समझे नहीं बैठ जाओ, मेरी बात ठीक तरह समझ करके पूछो, मुझे बात मत पूछो बिल्कुल, इस बात को ठीक समझो, बस कोई शंका तो पूछो। लानो आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत, सदैव सदैव ऊपर अवेत बुद्धिया धृतिगृहित है, धृतिगृहित है बुद्धिया समय से ऊपर उपराम हो जाए, हटावे नहीं, चलावे नहीं, कुछ चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह नहीं, चिंतन करना ये भी आग्रह नहीं, किंतु इससे उपराम हो जाए, हमें कुछ लड़े नहीं, नहीं उससे कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं करता न न करने से मतलब है न करने मतलब है, करने के अभी आग्रह भी न हो, न करने के भी आग्रह न हो, उपरती हो जाए साफ, ऐसे उपरती से चुप हो जाए। ख्याल में आया कि नहीं, उपरती से चुप, संस्थित चिंतन नहीं करना है ये भी नहीं होना चाहिए, चिंतन करना है ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी चिंतन न करे, उपराम उपराम, हटाना नहीं है ना, चिंतन को हटाना है ना, किसी फूर्णा को हटाना है ना, किसी फूर्णा को लाना है, किंतु इससे उदासीन गुणा वर्तन से स्थित रहते, गुणा बड़ा वर्त रहे, अपना हो रहा प्रकृति के द्वारा क्रिया हो रही है, अपने कोई मतलब नहीं, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। ये बात के द्वारा समझेगा नहीं, करने न करने से कोई संबंध नहीं है, अपना है ही नहीं, करना भी प्रकृति है न करना भी प्रकृति है, करना न करना दोनों से उपराम है, ये स्वरूप है। उसकी युक्ति मैंने बताई कि श्वास के फुंकार द्वारा त्याग कर दो, श्वास फेंक दो बाहर, एक बार दो बार तीन चार बार ऐसे होकर फिर बाहर श्वास निकाल कर सुख दो, कुछ फुरना नहीं होगी, और फुरना होती हो तो आंखों को ऐसे ऐसे एक क्षण ही होता है, निर्विकलता का अनुभव होगा ही, और उसी में स्थित रहना है, बात इतनी है, वह अहंकार वर मन बुद्धि कोई नहीं, मन बुद्धि इंद्रियां कोई नहीं, कोई फूरना नहीं, कोई संसार याद नहीं, ये बात लक्ष्य में आएगी नहीं। क्या कहे आप ध्यान मत दो, प्रकृति का ध्यान देना ही नहीं है, प्रकृति क्या है क्या नहीं है कुछ भी ध्यान मत दो, न करने पर ध्यान है, न करने पर ध्यान है, न करने पर ध्यान है, नहीं वित से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं, न करने से मतलब है न करने से कोई मतलब है, करना न करना दोनों से उपरा ऊपर से संदेश नहीं ऊपर हमें जीत, मैं इतना चाहता हूं कि ये बात के द्वारा समझ में आएगी नहीं, अनुभव हो चाहे न हो, तो बात के द्वारा आ गई तो इसमें स्थित होना है। अभी आप जितना जल्दी हो सके उतना करो, अभी जाकर बैठ जाओ एकांत में, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, नहीं किसी के साथ संबंध से मतलब है, न संबंध तोड़ने से मतलब है, न जोड़ने से मतलब है, कोई मतलब नहीं, दो क्रिया बताई, एक तो श्वास क्रिया आंख आंख की, श्वास क्रिया तो बाहर फुंकार श्वास नाक के द्वारा निकाल देना, निकाल करके चुप हो जाओ, और आंखों के द्वारा ऐसे 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 करके और फिर आंख में मिस लो, उसी क्षण इसका अनुभव हो जाएगा। ना श्वास पर ध्यान देना ही नहीं, न आते देना न जाते देना, ये पहले बताइए, पहले श्वास फेंको और फिर से श्वास पर ध्यान नहीं देना, आंखों पहले कर दो फिर ध्यान ध्यान देने का आंख खुली है बंद है कुछ ध्यान नहीं देना, उपराम हो जाओ। क्या कहे? ठीक है, बस इस बार हो जाए। अभी अभी गंगा किनारे बैठ करके अभी ऐसे ही करो, अभी से ही बिल्कुल उपराम। नहीं बतस्य कृतेन अर्थ न अकृते नहीं है कष्ट, न करने से मतलब नहीं, न करने से भी कोई मतलब नहीं, किसी प्राणी के साथ कोई संबंध नहीं, किसी से कुछ लेन देन नहीं, कुछ करना और कुछ नहीं करना दोनों ही नहीं, बस करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही करना है। क्या करना कि करना कुछ नहीं करना, बस बहुत ही बढ़िया चीज है एकदम स्वरूप स्थिति स्वाभाविक। ध्यान करना नहीं है, चिंतन करना नहीं है, करने से न करने से दोनों से आधार स्वतः स्वभाव इनसे उपरती, करना न करना सब प्रकृति और इनका कुछ भी संबंध नहीं, प्रकृति से अतीत तत्व प्रकाश संचय प्रवृत्ति संचय न दृष्टि संप्रभुता ने मोह में दृष्टि संप्रभुता न निवृत्ता ने कांक्ष भी उदासीन उदासीन गुणे यो न विस्तार थे गुणा वर्तन तिथि यो प्रतिष्ठित व्यंग थे, कोई चेष्टा नहीं है। अब नारायण 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 बेटा पा
राम। यह प्रवचन परम सद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5016 तदनुसार दिनांक 8 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम परा कृष्ण वदनम परम ब्रह्म राखे सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदनम प्रपन्न पारिजाताय त्रिवेदी ज्ञान मुद्राय कृष्णाय वसुदेव सुतं देवं कृष्णानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्सुमहं जानामि। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते। नारायण 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 राम राम राम। अब बोलो नारायण।
महाराज जी आज सुबह सुसुप्ति के जागृत सुसुप्ति के बारे में बताइए। तो जागृत सुसुप्ति जो आप नाक से सांस लेकर बाहर निकाल करके बताइए,
वहां तो एक पहले की क्रिया बताइए, उसका नाम जागृत सुसुप्ति नहीं है।
उसमें पहले तो भान लेता है, भान लेगा और पीछे जब कोई भी चीज का भान नहीं रहेगा वो अवस्था मन की दो अवस्था हो गई।
जो कुछ भी भान नहीं रहे वही जागृत सुसुप्ति होती है। श्वास प्रसारण प्रसारण नेत्रों की क्रिया तो पहले बताया कि संकल्प विकल्प बहुत उठते हैं विचार में, तो भी कैसे शांत हो, उनके शांत करने के लिए तैयारी की है, वो जागृत सुसुप्ति नहीं है।
वो जागृत
सुसुप्ति नहीं है, अरे वो करण सापेक्ष है, वो
करण सापेक्ष हो तो अपने
आप करण सापेक्ष नहीं, क्यों पंचायती में पढ़ो, उसमें करण कुछ नहीं पड़ेगा।
अच्छा,
करण निरपेक्ष में कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है, कैसे करण करण होगा उसमें, करण तो साधक तमम करण होता है।
तो वो तो फिर अपने आप होगी, वो
अपने
आप
तो वो कुछ भी चिंतन न करे।
कुछ नहीं,
इसको मैं दो तीन बार कह दिया ना, करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही करना है।
वो
हाँ, कुछ नहीं करना ही करना है वहाँ। अब कुछ नहीं करना मैं करता, कारण मैं कर्म संप्रदाय का पालन करता हूँ। ठीक है। नारायण 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 नारायण। सुबह एक भाई ने कह दिया कि जैसे जागृत में अहम जागृत रह देता है, ऐसे सुषुप्ति में जागृत कैसे रहे। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, गीता तो निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति, निरहंकार की बात कहती है। ममता और अहंता है ये ही बंधन है। मैं मेरे की जेवड़ी गड़बंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। ये मैं और मेरा यही रस्सी है, इससे ही संसार बंधना होता है। तो कबीर क्यों बने जिसके राम आधार है, मैं और मेरा आधार नहीं है। मैं और मेरा आधार है उसका बंधन होता है। तो मैं रहना नहीं चाहिए जागृत में भी, तुम कहते तो सुषुप्ति में मैं रहे, तो ये कोई काम की बात नहीं है। ये मैं तो हटना है, अब मैं कैसे हटे। तो इस वास्ते मैंने कहा जागृत में तीन अवस्था होती है, जागृत में जागृत होती है, जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है। तीनों अवस्था जागृत अवस्था में होती है। ये एक नई सी बात लगती है आपको, सुबह मैंने ये बात कही थी। तो जागृत में जागृत क्या है, जागृत में स्वप्न क्या है, जागृत में सुषुप्ति क्या है, इन तीन बातों को कम से कम कम से कम कम से कम आप वाणी से बोल सको, सुन सको, कह सको, सुना सको, इतनी तो समझ लेनी चाहिए ना, कम से कम इतनी तो समझनी चाहिए ना। जागृत में जागृत क्या है, जागृत में स्वप्न क्या है, जागृत में सुषुप्ति क्या है, बातों के द्वारा जैसे शास्त्र पर जुड़ा बाताओं समझ ले। तो जागृत में जागृत वो है जो सावधानी से हम काम करते हैं, ठीक तरह से सावधानी पूर्व खाना पीना बैठना उठना सोना जगना बात करना, ये जो सावधानी पूर्व काम करते हैं वो सावधानी पूर्व करना है जागृत की जागृत। और जागृत की स्वप्न होती अवस्था कि जिसमें अभी जागृत से कोई संबंध नहीं है, ऐसी पूरा हो जाए, अचानक कोई बात याद आ जाए और उसमें मन लग जाए या उसका चिंतन होने लगे, पता ही नहीं यहाँ जागृत का पता ही नहीं, ख्याल ही न रहे, केवल वो मनोराज्य ही चलता रहे, यह है जागृत का सपना। ये जागृत में स्वप्न अवस्था है, ख्याल में आई कि नहीं। कम से कम इतनी बात है कि सीख तो लो, कोई सुनावे तो सुन ले, सीख ले। तो जागृत की स्वप्न अवस्था हुई वो। अब जागृत की सुषुप्ति क्या है कि ना तो जागृत की चिंतन रहे, ना जागृत की याद रहे, ना चिंतन हो कुछ भी, भीतर का भी चिंतन नहीं, बाहर की भी कोई क्रिया नहीं, बाहर की क्रिया जागृत हुई, भीतर का चिंतन स्वप्न हुआ, अब कोई बाहर भीतर की क्रिया नहीं है और चुपचाप शांत है। तो ऐसी अवस्था में नींद आती है, तो नींद में कुछ भी याद नहीं रहता, तो नींद में अहम को भूल जाते हैं और उसमें होश नहीं होता, बेहोशी में रहते हैं। तो होश तो भूले नहीं, याद रहे ठीक तरह से, नींद का अंश भी नहीं है और चिंतन भी कुछ नहीं है, ऐसी अवस्था होती है वो जागृत सुषुप्ति है। जागृत अवस्था में सुषुप्ति मानो कुछ भी याद नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं, एक बैठे चुपचाप हो गया, तो जागृत सुषुप्ति है, उसमें असली बोध होता है, जिसको ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, वो तत्व प्राप्त होता है जागृत की सुषुप्ति में। अब वो जागृत सुषुप्ति कैसे हो, उसके लिए दो क्रिया बताई मैंने। वो जागृत जागृत सुषुप्ति नहीं है, जागृत सुषुप्ति की तैयारी है कि कैसे करें। मन चुप हो जाओ तो मन में फुरन होती रहती है, मन में तरह बात आती ही रहती है, अब वो सब भूले कैसे। तो उसके लिए मैंने उपाय बताए दो। एक तो श्वासों की क्रिया बताई, श्वास है उसमें ऐसे फुंकार से श्वास छोड़ा जाए, दो तीन बार छोड़ करके बाहरी रख दे, श्वास को बाहरी रख दे हो जाए, तो उस समय में एक क्षण भर होता है वृत्ति रहित होती अवस्था। वृत्ति रहित अवस्था होती है और वृत्ति रहित अवस्था का नाम ही जागृत सुषुप्ति है, जिसमें कोई पूर्णा नहीं और ख्याल ही नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं, पूर्णा ही कुछ नहीं, उसको जागृत सुषुप्ति कहते हैं। तो जागृत सुषुप्ति के लिए फूर्णा दूर होती है, फूर्णा दूर होती नहीं कष्ट क्षण में भी जात कर्म करते, किसी अवस्था में कोई भी क्षण मात्र भी बिना किए कर्म किए बिना रहता नहीं, क्षण मात्र भी तर्क करने का काम चलता ही रहता है। तो उन संकल्पों को कैसे हटावे, उस हटाने के लिए युक्ति बताई कि ये प्रसर्जन करना, बार 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 श्वास यूं करके या फिर श्वास को बाहर ही रोक दो, एक सेकंड दो सेकंड के लिए वो कुछ फूरना नहीं रहेगा, कुछ भी फूरना नहीं रहेगा, करके देख लो अभी, ये कोई ज्यादा अभ्यास की ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है, अब भाई कोई कर देख लो, अचानक कुछ याद नहीं है। तो ये क्षण होता है, ये समाधि क्षण है, जैसे अरब रुपयों का एक पैसा भी अरब रुपयों का अंश है, ऐसे ये जो कुछ भी चिंतन न होना ये जागृत सुषुप्ति का अंश है, ये मामूली चीज नहीं है, बहुत ऊंची चीज है। अगर हो सके 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार दिन में आप करो तो बड़ा बल मिलेगा। ये काम क्रोध लोभ आदि आ जाते हैं, शोक आ जाता है, हटता नहीं है, तो ये क्या है, ये है निर्बलता, जो वेग आता है उसको हम रोक नहीं सकते, तो ये हमारे में बल नहीं है, वो बल आ जाएगी इससे। ऐसे वृत्ति रहित अवस्था को आप पहचान लोगे तो आप में एक बल आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी, तो शोक चिंता आदि आपको सताएंगे नहीं, काम क्रोध लोभ आदि आपको सताएंगे नहीं, ये आएंगे तो इतने बल नहीं आएंगे जिसमें आपको गिरा दे, आपको अपनी स्थिति से च्युत कर दे, ऐसा बल नहीं होगा, आप में बल आ जाएगा, आप में खुद में इन वृत्तियों के हटाने का सहने का बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। तो वो शक्ति काय में है जो स्थिरता में है। मेरी बात को कृपा पूर्वक आप सुने, जैसे अपने चलते 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 थक जाते हैं तो किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं, तो बैठ जाते थोड़ी देर, बैठने के बाद फिर चलने की शक्ति आ जाती है, दौड़ते दौड़ते आदमी दौड़ता ही रहे दौड़ते गिर पड़ेगा तो पड़े पड़े में ताकत आ जाएगी, सोते स्वभाव फिर चलने की, बोलते 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 बोलना बंद ही नहीं करे, बोलता ही रहे तो बोलने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर चुप रह जाओ थोड़ी देर बोलने की शक्ति आ जाएगी। शक्ति निष्क्रियता से आती है, काम धंधा करते करते नींद आती सो जाओ, सोने के बाद बोलने की देखने की चलने फिरने की ताकत आ जाती है। तो ताकत सब भरी हुई है निष्क्रियता में, क्रियता में नहीं है। ऐसी पदार्थ को से हमारे को सुख मिलेगा, ये सुख तब मिलेगा जब पदार्थों का सहारा छूट जाएगा, भीतर से पदार्थों का महत्व भर जाएगा, उस समय में जो सुख मिलेगा पदार्थों का भी मिलेगा है ही नहीं। ऐसे ही क्रिया से सुख मिलता है, क्रिया से भोग होता है, इन भोग में रोग होता है, इससे थकावट होती है, मन की शक्ति क्षीण होती है, और चुप रह जाओ तो शक्ति संचय होता है, क्रिया रहित होने से एक ताकत आती है भीतर। तो क्रिया रहित होने में ताकत है, वो परमात्मा स्वरूप जो स्वयं, उसमें सब शक्ति वहां से आती है। हम लोगों में ताकत बोलने चलने खाने पीने की बात करने की शक्ति आती है, तो शक्ति वो स्थिरता में है, स्थिरता में शक्ति है। तो अस्थिरता कैसे हो, वो स्थिरता हरेक की होती है, ख्याल नहीं है उधर, वो वृत्ति होती है। थोड़ा और ख्याल करें, ये तो मैं ख्याल करने की ये बताई कि स्थिरता से ताकत आती है। इस तरह पर आपका ख्याल करेगा, बोलते बोलते चुप हो जाओ तो बोलने की शक्ति आ गई, काम करते करते थक जाओ तो बैठ जाओ, काम करने की ताकत आ जाएगी, चलते चलते थकावट हो जाओ तो आप बैठ जाओ, फिर विश्राम करो, चलने की ताकत आ जाएगी। तो ताकत निष्क्रिय तत्व से मिलती है और सक्रिय में ताकत नष्ट होती है, ये एक सिद्धांत है। इसको समझ ले तो आदमी कुछ तो होश आ जाता है उसे, नहीं तो अभी तो पदार्थ हमारे क्रिया में ही ताकत मानते हैं आप, ये क्रिया और पदार्थ शक्ति का नाश करने वाली है, आपका पतन करने वाली चीज है, इनसे रहित होने पर आप में ताकत आती है। जो आदमी काम करता है वो काम करता न करने से शक्ति आती है उसमें, खेत का काम करो तो थोड़ा सा विश्राम ले लो होगा ठीक, चलो तो थोड़ा बैठ जाओ विश्राम ले लो फिर काम होगा, बंदर को आपने देखा नहीं कूद तो कूद बैठ फिर बैठ जाए थोड़ा फिर बैठ बैठ फिर कूद फिर चलो तो बैठ जाएगा, तो बैठने से क्या होता है, चलने की शक्ति आती है, ताकत आती है। पशुओं में पक्षियों में सब में ऐसे आप में भी शक्ति आती है, आप ख्याल नहीं करते, इधर ख्याल करो तो आप खुद को अनुभव होगा कि देखते देखते देखने की शक्ति नष्ट होती है, चुप रहो आंखें भेज लो देखने की ताकत आ जाएगी। तो शक्ति से ये चलने से क्रिया से शक्ति क्षीण होती है, क्रिया के करने में कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान आदि ये कारक होते हैं। अब कर्ण रहे तो कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है कि इन कर्णों से काम नहीं ले तो परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। पर इस बात को तो अब सीख तो लिया, अब कर्ण निरपेक्ष पर तो ध्यान नहीं देते। अब कर्ण निरपेक्ष कैसे हो तो उसके लिए विधि बताया कि भाई ये श्वास पास छोड़े छोड़ दो, छोड़ने के बाद आप देखो थोड़ी देर कुछ नहीं चिंतन होगा, करके देख लो अभी, ये कोई ऐसी नहीं कोई अभ्यास करने से होगी नहीं, अभी कोई कर लो चिंतन करके छोड़ दो, बिल्कुल कुछ नहीं चिंतन होगा तो कुछ नहीं चिंतन ये चाहे इतनी देरी हो, पर ये अवस्था हरेक की हो सकती है, हो सकती है नहीं होती ही है, ख्याल नहीं करते आप। एक बात याद आई इसकी बात दूसरी बात याद आती है, तो पहली बात नष्ट हुई दूसरी बात पूर्ण हुई तो बीच में खाली रहा मन, उसमें विश्राम मिलता है, ये समता है, ये समता ही असली चीज है, परमात्मा का स्वरूप है, संसार में उस समय नहीं रहता है, परमात्मा के स्वरूप में रहता है, तो कर्ण से नहीं कर्ण निरपेक्ष है वो, हम क्या कर्ण है क्या क्रिया है ही नहीं, न करता है न कर्ण है, तो इस तरह से निरपेक्ष में बिल्कुल कुछ भी चिंता नहीं, अचानक ऐसी अवस्था होती है। अब होने के लिए मैंने दो बात बताई सर, एक तो प्रसादन विराज बाहर श्वास छोड़ना और फिर बाहर ही रोक देना थोड़ी सी देर, फिर धीरे धीरे ले लिया तो एक वृत्ति रहित अवस्था होती है, आप करके देखो होता है कि नहीं होता है। पूर्णा एक हुई दू छूटी दूसरी पूर्णा हुई तो बीच में संधि में निराकुल होता है, जैसे डोला होता है झूला होता है, वो झूला जो झूलते हैं उसमें झूला यहाँ लकड़ी से बंधा हुआ है, कल्पना करो तो वो झूला इधर जाएगा इधर भी जाएगा, वो झूला होगा हिंड कहते हैं अपने हिंड से, तो वो जो झूला होता है वो एक लकड़ी के सामने एक समावस्था में आता है, समावस्था में आए बिना इधर जाएगा कैसे, और इधर से समावस्था आए बिना इधर कैसे जाएगा, तो समावस्था आती है, ऐसे वृत्तियों की क्रियाओं की समावस्था आती है और वो समावस्था परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, तो उस समावस्था में स्थित रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, इसमें कर्ण क्या करेगा, कर्ता क्या करेगा, उद्योग क्या करेगा, क्या उद्योग है उसमें। अब दूरा घूमता है समावस्था में आ जाएगा तो उसे कुछ करना पड़ेगा, स्वतः समावस्था आवेगी ही, ऐसे कर्म रहित अवस्था होती ही है हर एक प्राणी की होती है। अब उसको साधन मान दो कर्ण निरपेक्ष साधन हो जाएगा, अब नहीं तो होकर चले जाएगी, आपको कोई लाभ नहीं, आप ख्याल ही नहीं करते उधर, तो ऐसे कर्ण रहित अवस्था हो कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, तो ऐसे चुप रह जाए, अभी आप काम करते करते चुप हो जाओ, कुछ चिंतन नहीं, अचानक स्वाभाविक ही। तो एक तो मैंने बताया प्रसन्न विधान ये है, एक बताया आंखें है ना, इसको ही हम नहीं ऐसे 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 करके फिर चुप हो जाओ। तो जितने मन के संकल्प विकल्प है ना, उसी कुतर हो जाएगी, कट जाए, कट 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 जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी। तो ये दो वृत्ति दूर करने, वृत्ति स्थिर करने का उपाय बताया, इनसे वृत्ति स्थिर हो जाती है, वो करने के साधना साफ हो जाता है और जागृत की सुषुप्ति हो जाती है। तो क्षण मात्र हो जाए, बढ़ाए लो आप दिन में 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार कर लो, कौन मना करता है। तो वो मना करने से ये निर्विकल होने की ताकत आप में आ जाएगी। निर्विकल्प में जो शांति है, जो सुख है, जो ताकत है, वो विकल्प संकल्प में नहीं है। निष्क्रिय में जो ताकत है वो क्रिया में नहीं है। क्रिया में ताकत हुई नहीं, होगी नहीं, थकावट होगी, क्रिया करने थकावट होती है। भोग जितना भोगा जाएगा उनमें थकावट हो जाती है, खाते खाते खा नहीं सकोगे, पानी पीते पीते पी नहीं सकोगे, देखते देखते देख नहीं सकोगे, कोई क्रिया करो थकावट होगी। और थकावट का नाम यहाँ तृप्ति कहते हैं, तृप्ति होगी, सर भोजन के लिए तृप्ति होगी, तृप्ति का एक धूल की होगी, खा नहीं सकते, ताकत नहीं रही। बात तो चाहिए वास्तव में शक्ति क्षीणता, शक्तिहीनता को तृप्ति कह देते हैं, भोजन के लिए तृप्ति हो गई। तृप्ति क्या है कि खा नहीं सकते, खाने की शक्ति नष्ट हो गई, अब खाने की ताकत नहीं रही, इसका नाम कह दिया तृप्ति। तृप्ति नहीं है, थकावट है। थकावट से चुप होते वो शक्ति रहते आप चुप हो जाओ तो आपको बहुत बल मिलेगा, उसमें भी बल मिलता है कि थकावट की क्रिया नहीं कर सकते, बल मिलेगा आपसे, आप बल मिलेगा भगवान की तरफ से, बल मिलेगा कुछ न करने से, करने की ताकत आ जाएगी। तो मैंने ये बीच में पूछा कि ये बातों के द्वारा आप बात समझ गए कि नहीं, अनुभव में न हो चाहे पर बातों के द्वारा तो समझ गए ना, ऐसे होता है चीज। तो जागृत में वो सुसुप्ति है, हर एक अवस्था में आप चुप हो सकते, बाहर बैठे हो जो निष्क्रिय तक अनुभव होगा, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, कुछ याद नहीं होगा, शांत है। वो निष्क्रियता है, उसमें ताकत है, बहुत विलक्षण ताकत है, अलौकिक ताकत है। सब करने की ताकत वहां से उत्पन्न होती है, तो इसमें कर्ण करता है ही नहीं, वो तत्व है, उसमें कर्ण कैसे होगा। उसके करने के लिए जैसे मैंने श्वास बताया, आंखों की क्रिया बताई, ये क्रिया उसका साधन है। इसके बाद में निष्क्रियता है, वो उस तत्व की प्राप्ति का साधन है, तो वो कर्ण निरपेक्ष तत्व है, तो उसके साधन भी कर्ण निरपेक्ष है, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। अरे वो क्रिया नहीं होगी तो अहंकार नहीं होगा, अहंकार होगा तो क्रिया होगी, क्रिया होगी तो अहंकार होगा बीच में, नहीं तो क्रिया कैसे कौन करेगा। क्रिया होगी तो कुछ करने वाला होगा, तो अहंकार है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, करता मानता है, इस बात नहीं विकिंचित करो मिति युक्तो मने तत्वित, तत्ववेत्ता को चाहे मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा माने, तो मान्यता करता हूँ ये मिट जाती है, मिट जाती है जो तत्व रह जाता है, वो तत्व रह जाता है, उसमें प्रकृति का संबंध नहीं है, निर्मोह निरहंकार हो गए, न ममता है न अहंता है, तो तत्व रह गए है जो कहते हो, तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो जागृत में भी अहंकार रहित हो जाता है। उसने तो पूछा कि जागृत में जैसे अहंकार रहे, सुषुप्ति में अहंकार कैसे रहे। अरे ये सुषुप्ति में अहंकार नहीं, वैसा जागृत में कैसे रहे, प्रश्न तो ये है करना करने का, असली बात जाननी तो ये है। तो इसमें भी ऐसी अवस्था एक होती है, तो इसमें मैं बीच में पूछा कि कम से कम कम से कम कम से कम आप इस बात को बात के द्वारा को समझ गए ना, इस अकल में आ गए ना, तो ऐसी एक निष्क्रिय अवस्था होती है। उस निष्क्रिय अवस्था में परमात्म तत्व में ही स्थिति होती है, सक्रिय अवस्था में भी मात्र जीव की स्थिति परमात्मा में है, स्वतः स्वाभाविक, उसमें स्थिति करना नहीं है, की होता है वो होता है प्रकृति का कार्य, इसमें करना पड़ता है, और स्वतः अपने स्वरूप में स्थिति स्वाभाविक है, वो करना नहीं है। क्यों हुई हो तो साथ में अहंकार रहेगा, बुद्धि रहेगी, ये साथ में रहेंगे। जड़ के संबंध बिना कोई अभ्यास नहीं कर सकते, कहीं भी स्थिति नहीं कर सकते। जड़ का अभ्यास, जड़ का संबंध रहना पड़े, और जड़ के संबंध रहित होने पर तत्व स्वतः रहता, कुछ करना नहीं रहता है। आज मैंने कई बार कहा कि करना क्या है, कि कुछ नहीं करना ही करना है। ना फूना करना, ना संकल्प हो जाए करना, ना संकल्प मिट जाए ये करना, ये भी नहीं करना संकल्प मिट जाए। मिटने की इच्छा नहीं, करने की भी इच्छा नहीं। कर्मणि अकर्मी ये इसकी व्याख्या में वहां पर विचार किया है। कर्म योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से, तीनों दृष्टि बताई वहां। भक्ति योग योग माम उपस्थित सर्वत्र सर्वंत्र, सब में भगवान को देखे, भगवान में ही सबको देखे चुप हो जाए। और ज्ञान योग में सबको आत्मा में देखकर आत्मा को सब में देखे, सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि च आत्मनि, ये हो जाएगा। और योग माम उपस्थित सर्वसर्वंत्र, यही कर्मणि अकर्मी है उपस्थित, अकर्मणि कर्मी है, ये कर्म योग में। योग माम उपस्थित भक्ति योग में, सर्वभूत समात्मा सर्वभूतानि च आत्मनि, ये ज्ञान योग में। तीनों बताई है 29, 30 और 32, लेकिन 18 में साफ है कर्मणि अकर्मी है उपस्थित, अकर्मणि च कर्मी है, साफ एकदम। आगे इसकी व्याख्या है 5 श्लोकों में। तो इस दर चुप हो जाना। अब वो चुप आप किस रीति से जाओ, परमात्मा का स्वरूप देखते तो जाओ, सगुण का ध्यान करो तो भगवान का ध्यान करके चरणों में चित लगा रो, बस वहीं स्थिर हो गए चरणों में ही, तो वही बस स्थिर जाएगी, वही कारण साथ हो जाए, कारण जरूरत नहीं आ गए। ध्यान कर दो, मुख पर लगा लो, वात्सल्य प्रेम है जैसे कहा, अपन लाला को बेटा मानते हैं, वे मुख की तरफ देख करके और चुप हो जाकर देखे नहीं, देखे देख रहे वह सब तरह से वृत्ति हटा और भगवान मुख की तरफ देख लिया, देख करके चुप हो गए, तो वही कर्ण निरपेक्ष साधन हो जाएगा, वही समाधि हो जाएगी। वक्षस्थल में भगवान देख लिया, भगवान ने चरणों में देख लिया, देख कर चरणों में स्थिर होकर फिर कुछ भी चिंतन नहीं करे, तो कुछ भी चिंतन नहीं करेगा, उसमें उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सगुण करो, निर्गुण करो, कर्मयोग करो, कोई करो नहीं, वो निर्मुगो निरहंकार होगा। देखो ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है, और मनस स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने, मनस स्थान में मन है, बुद्धि है, इंद्रिया, ये प्रकृति स्थानी प्रकृति में सिद्ध रहते हैं, और उसको पकड़ लेते हो आप कि मेरा मन बुद्धि अहंकार है, ये अनर्थ का मूल है। अच्छा, ये नहीं पकड़ोगे तो आप में रहेगी, जिसमें प्रकृति का जो कार्य मन बुद्धि इंद्रिया है, इनको प्रकृति स्थानी कहा है, मानो ये प्रकृति का संग नहीं छोड़ते, आप इनका संग करके परमात्मा से विमुख हो जाते हो, ये गलती होती है। आप परा प्रकृति हो, उत्कृष्ट प्रकृति हो, मन उत्तर प्रकृति का नतीजा ये हुआ कि जड़ के साथ मिल गए, जड़ मिलता नहीं आपके साथ में, वो तो प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित रहेगी, हरदम मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्रकृति में स्थित रहेंगे। ऐसे आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा में है, स्वाभाविक है, ये जो कृति साध्य मान लेते हैं वो वास्तव में स्थिति नहीं होती है। कृति साध्य से संसार से निवृत्ति होने में सहायता हो जाएगी, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये आप समझते हैं कि ये पता नहीं, हमें पता नहीं, आपके ख्याल में आती है ये बात, बातों के द्वारा ख्याल में आती है ना, इतनी तो आती है, ये तो बड़ी सीधी बात है, सरल बात है। तो ऐसे चित्त करके कुछ भी चिंतन नहीं करे, तब होती जागृत में सुषुप्ति। जैसे सुषुप्ति में कुछ भी याद नहीं रहता, परंतु तो खुद याद करने वाला भी याद नहीं रहती, उसमें याद करने वाले की याद रहती है, पर याद नहीं रहती है, स्वतः जागृत रहती है। जैसे मनुष्य प्रकृति स्थित है, ऐसे आप पर परमात्मा के स्वरूप में स्थित होंगे। नींद नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, फुरना नहीं होना चाहिए, फिर आप किसी परमात्मा में होंगे स्वतः, उसका नाम है जागृत सुषुप्ति। तो जागृत सुषुप्ति में बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ये बात है। तो जागृत सुषुप्ति है, इसके लिए उद्योग है, कुछ नहीं करना, हमें करना कुछ है ही नहीं, हरदम ये विचार के मेरे को करना क्या है। ऐसे निर्विकल्प होने के लिए अगर आप कृपा करें थोड़ी रोजाना अभ्यास करें कि हमारे कुछ नहीं करना है, चुप हो गए 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार कर लो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बीच में कुछ नहीं करता, तो एक निर्विकल होने की ताकत मिलेगी और निर्विकल का आनंद आवेगा, वो आनंद आप फिर छूटेगा नहीं आपसे, उसमें इतना सुख है जो विकल्प सुख रहते कि कहीं किसी भोग में किसी संग्रह में सुख हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, तो आपसे आप मन खंच जाएगा तो संकल्प विकल्प होंगे याद आवेगी, तो जैसे आंख में कोई फूस पड़ जाए खटखटा है ना, ऐसे संकल्प विकल्प खटकेगा आपको बुरा लगेगा, कब के जब निर्विकल्प होने का सुख मिल जाएगा, स्वतः ही स्वाभाविक ही सुख जो मिलता है निर्विकल्प नहीं मिलता है। मैंने बहुत देखते हमारे घड़ी चाहिए और घड़ी जी मन में खूब आई, आपने खड़ी दे दी तो घड़ी मिलते ही एक खुशी आती, तो खुशी वो घड़ी से नहीं आई है, घड़ी से खुशी मानते तो घड़ी देते वो भी खुशी रहनी चाहिए, घड़ी है भाई तो ऐसा नहीं रहा, तो घड़ी की तरफ वृत्ति दौड़ती थी मन से, वो दौड़ना बंद हो गया तो क्रिया रहित होने से सुख मिला है, मानते पदार्थ से ना पदार्थ में ना भोग में है, वृत्ति रहित होने से सुख है, तो ये पता है नहीं, कुत्ता हड्डी चबाता है और आपने मसूड़ा टूट जाता है तो खून आता है, वो समझता है गड्डी हड्डी में जा रहा है, ऐसे आप बताती उसको आप समझते इनसे सुख मिलता है, इनसे सुख कभी मिला नहीं कभी मिलेगा नहीं मिल सकता ही नहीं, इनसे रहित होने पर सुख छूटता ही नहीं जाता ही नहीं, ऐसे निर्विकल होने की अवस्था को आप अगर आदर दो महत्व दो तो आप सबको नित्य प्राप्त है एकदम ही, उसमें कर्म करता कर्म समझता कुछ है नहीं, जितने कारक होते हैं प्रकृति में होते हैं, प्रकृति से अतीत नहीं है कारक, तो कारकों से कैसे प्राप्ति हो जाएगी, उसकी कारक रहित ही होता प्राप्ति होती है स्वतः स्वाभाविक, परंतु वो करने की एक आदत पड़ी हुई जो करने ही करना अच्छा लगता है, करने पर नहीं रह नहीं जाता, अब क्या करें अब क्या करें, अरे करना है ही नहीं, और ये बात ना तो मानते हैं ना मानना चाहते हैं, अरे कोई कहे तो मूर्ख मानते हैं समझ नहीं, ये बेसमझ है, ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, तो प्रकृति स्थानीय है मन सचन यानी, अरे स्वयं परमात्मा में स्थित है, स्वयं स्वयं परमात्मा में स्थित है, ये मन सचन प्रकृति में स्थित है, तो ये तो इतने सपूत है कि दूर जाते ही नहीं, आप अपना मान लेते हो तो ये प्रकृति में स्थित रहती है, आप परमात्मा में स्थित रहते हुए अपने को परमात्मा न मान मन बुद्धि में मान लेते हो, क्यों आप चेतन हो ना, आप में स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता आपके हानि के लिए है, फायदा नहीं है इसमें, कोई फायदा नहीं है नुकसान है, तो ये बात है, तो जागते हुए बिल्कुल निर्विकल हो जाए, शाम को कीर्तन करते हो तो कीर्तन के बाद मैं चुप होता हूँ, उस चुप में आप निर्विकल हो जाओ, परमात्मा स्थिति बहुत सुगमता से हो जाएगी, कीर्तन करते करते परमात्मा में स्थिति हुई, परमात्मा चिंतन हुआ, ऐसे कुछ नहीं चिंतन करो, वो कीर्तन आपके भीतर बैठ जाएगा, एकदम भीतर जम जाएगा, तो उससे निर्विकल्पता स्वतः होगी, ऐसे जागते हो जब नींद से उसके बाद थोड़ी देर सो रहो तो आपकी स्थिति परमात्मा स्वरूप हो जाएगी, नींद लेते समय आरंभ में बिछौने पर बैठ गए कुछ देर कुछ भी चिंतन न करके सो जाओ, सो उसमें न चिंतन करता आपके साथ में कारण शरीर तक पहुंच जाएगा, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इतना सुगम साधन है, बढ़िया साधन है, तो कर्ण कहाँ है इसमें, करता भी नहीं कर्म भी नहीं, कर्म नहीं संप्रदान अपदान कुछ नहीं, ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, तो इस तरह से कैसे होगा, जागृत में सुषुप्ति में हो जाएगा, तो जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करना है, यही वास्तव में कर्तव्य है, कर्म करना नहीं है, करने से जो प्राप्ति थी धन कमा लिया बड़ा काम किया, कुछ बड़ा नहीं किया है, सब छूट जाएगा फोंक निकल जाएगी, करना वो है जो नित्य आपको प्राप्त है उसको प्राप्त कर लिया कुछ न करके तो महान काम कर लिया आपने, मगर लोग के पास में नहीं है वो ले लिया तो प्राप्त हो गया, कहता है नहीं है वो नहीं रहेगा, और ये स्वतः है परमात्मा से वो कर लिया बड़ा भारी काम कर लिया, तो कुछ नहीं किया इसमें बड़ा भारी करना होता है, तो करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही है, अब इसमें कोई शंका होता आप करो,
लय और विक्षेप है,
हाँ
ये विशेष है जो
हाँ लय विक्षेप होता है कैसे इसमें मिटे, विक्षेप मिटने के लिए क्रिया बताई आंखों की और श्वास की, विक्षेप मिटने के लिए। और लय हो तो खड़े होकर घूमने लगे, घूमने फिर बैठ जाओ। निद्रा के सावधान ज्यादा रहना चाहिए, विक्षेप मिट जाएगा। विक्षेप तो संतों के संग से मिट जाता है, अच्छे संत मिलते हैं बात करते हैं तो सुख हो जाते हैं, मन लग जाता है, विक्षेप मिट जाता है। राहुल उनकी वाणी से मिट जाएगा। अपने वास्तव में विक्षेप मिटाना है, ये मलिनता अनंतकरण की ये मिटाना है, तो राग द्वेष मिटाना है, ये मत करो आप, ठीक हो जाएगा। अब साहब राग और द्वेष ये दो तो ये परिपंथ शत्रु ये है, इनको मत करो फिर ठीक हो जाएगा। तो मन लगाना इतना दामी नहीं है जितना राग द्वेष हटाना दामी है। मैंने आज के मन फिर कैसे हो, मन एकाग्र कैसे हो, क्यों फोड़ा? देखो भाई दोष ये नहीं है, दोष तो राग द्वेष है, उनको हटाने के लिए उद्योग नहीं होता, ना उपदेश होता, ना व्याख्यान होता है। ये बात तो उनसे रही तो उन्हें मैं चुप हो जाऊ।
विवेचन साधक संजीवनी का किस श्लोक में, किस अध्याय में?
पांचवें अध्याय, पांच छठे श्लोक के पांचवें पच्चीसवें, चौबीस पच्चीस छब्बीस श्लोक है ना, छठे अध्याय का उनमें है। और भी कई जगह है, कई जगह है और मानो समय समय उपरमेद बुद्धिया धृतिगृहित या आत्मसंस्तम मन कृपा न किंचित विचिंतित, ये है श्लोक खास। संदेह संदेह ऊपर ऊपर ऊपरा हो जाए, विरोध नहीं करे, ना करने पर आग्रह रहे ना न करने पर आग्रह रहे, ऊपराम हो जाए। अपने करने से मतलब है ना न करने से मतलब है, ऐसे संदेह संदेह ऊपर में मूल श्लोक ये है खास। संदेह संदेह ऊपर में बुद्धा दृष्टि आत्म एक परमात्मा है, ये आत्म मना करता न कर, कुछ भी चिंतन न करे, तो कुछ भी चिंतन करे उसमें स्थिति हो गई। खास मूल में आती है गीता, मूल में है न किंचित विचिंतित। आप करके देखो, मूल पढ़ो, समझ में नहीं आवे तो पूछो, आप अकल में नहीं बैठे तो पूछो। ऐसे चुप रहना है, वो है जागृत की सुषुप्ति। मन संसार की तो याद रहे नहीं और अपने स्वरूप की भूल गए नहीं, और अपने स्वरूप को भूल जाए तो वो होगी सुषुप्ति, और यह जागृत सुषुप्ति है। जागृत मन अपने स्वरूप को तो याद रहा और कुछ नहीं, स्वरूप को याद करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। सोते याद मैंने कृष्णा न किंचित न आत्मा का चिंतन करे, न अनात्मा का चिंतन करे, न प्रकृति का, न उसको चिंतन करे। नारायण 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 नारायण।
सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली। गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली साधो, दिन दिन अधिक चली साधो, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली। जह जह डोलू सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जह जह डोलू सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा, जो कछु करूं सो सेवा। जब सोवो तब करो दंडवत, जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो औरन देवा, पूजो औरन देवा, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पीवो सो पूजा, खाओ पीवो सो पूजा। गिरह उजाड़ एक समूह लेखूं, गिरह उजाड़ एक सम लेखूं, भावन राखूं दूजा साधो, भावन राखूं दूजा साधो, सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। आँखन मुंदो कानन रूंधो, आँखन मुंदो कानन रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारूं प्रभु, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नयन खुले नयन पहचान हंसी हंसी, खुले नयन पहचान हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी साधो, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी साधो, ऐसी तारी लागी साधो, सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। कहत कबीर यह उन मणि रहनी, कहत कबीर यह उन मणि रहनी, सो परगट कीनी, सो परगट करी भाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, सुख दुख से कोई परे परम पद, तेही पद रहास माई साधो, तेही पद पहास माई साधो, सहज समाधि वाले साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि बली। गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली साधो, दिन दिन अधिक चली साधो, सहज समाधि वाली साधो, सहज समाधि वाली साधो।